তোর এবার একদু কথা আবার শুনে। তো এক সময় এসে হুয়া কি কাঞ্চি রাজা কি যে পুত্রী থি রাজকুমারী উসকে উপর এক ভূত সবার হো গা আর ও অনপশনপ বক রহি থি পাগল কি তরহ উস নাচনা কুদনা জেসে ভি কিসি ব্যক্তি কে ভূত সবার হোতা হ্যায় তো কেসে ব্যবহার করতা ব্যসে হি ও করনে লগি। সবি লোক চিন্তিত হো গয়ে ক্যা কিয়া যায়, রাজা তো বড়ে হেরান হো গয়ে থে ক্যা কিয়া যায়, এস বৈদ্য কো বুলায়া উস বৈদ্য কো বুলায়া লেকিন কোই ঔষধ কাম নহি কর রহা থা। ফির উনহোনে যাদব প্রকাশ কো বুলায়া ক্যোঁকি যাদব প্রকাশ ও এসে কোই মন্ত্র তন্ত্র কো জানতে থে জিসসে কি ও কিসি ভূত কো বাহার নিকাল সকতে থে, কিসি কিসি কে উপর আগর ভূত সবার হুয়া হো তো মন্ত্র তন্ত্রো সে ও ভূত কো ভগা সকতে থে। তো যাদব প্রকাশ কো বুলায়া, তো যাদব প্রকাশ উস রাজকুমারী কে সামনে বেঠে আপনে মন্ত্র তন্ত্র বোলনা শুরু কর দিয়া উনহোনে। তো জোর জোর সে ও লড়কি হসনে লগি, মতলব ও ভূত জো হ্যায় ও ইস রাজকুমারী কে মাধ্যম সে বোল রহা থা, জোর সে একদম হসকর বোলনে লগা। ও লড়কি বোলনে লগি কি আরে যাদব প্রকাশ, তুমারে সারে মন্ত্র ব্যর্থ হ্যায়, কুছ কাম কে নহি, ক্যো সময় বরবাদ করতে হো, ঘর চলে যাও বাপস। লেকিন ফির ভি যাদব প্রকাশ নে মন্ত্র মন্ত্রো কা উচ্চারণ করনা বন্ধ নহি কিয়া, वहां बैठ के फिर भी मंत्र बोल रहे थे, कुछ तंत्र कर रहे थे। फिर भी लड़की बड़े जोर जोर से हंस के बोलने लगी, अरे यादव प्रकाश, मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है, क्यों खामखा समय व्यर्थ करते हो, चले जाओ घर में, तुम्हारी शक्ति से मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब यादव प्रकाश वहां रहे तो उन्होंने यादव प्रकाश से कहा, अगर वास्तव में तुम्हें इस राजकुमारी के शरीर से भगाना चाहते हो तो तुम्हारे शिष्य रामानुज को यहां पर बुलाओ, उसी में शक्ति है, उसी में शुद्धता है मुझे इस शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो फिर यादव प्रकाश ने अपने शिष्य रामानुज को बुलाया और रामानुज जब वहां आए तो सीधे हाथ जोड़कर उस राजकुमारी के पास में आए और कहने लगे कि क्यों इस लड़की को सता रहे हो, यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। तो फिर वो लड़की बोलने लगी, मतलब वो भूत बोलने लगा, हां मैं अवश्य चले जाऊंगा लेकिन एक शर्त है कि मेरे सर के ऊपर आपके चरण कमलों को आप रखना। तो फिर वो राजकुमारी ने दंडवत प्रणाम किया रामानुज के प्रति, जो कि उस समय एक नव युवक थे केवल, और उनके गुरु यादव प्रकाश इत्यादि सब सामने थे, राजा महारानी वहां सब थे। और उस समय भगवान का स्मरण करते हुए और उसके पहले अपने गुरु को दंडवत डालकर फिर उन्होंने अपने दोनों चरण कमल उस राजकुमारी के सर के ऊपर रख दिए और फिर कहा कि अब निकल जाओ। तो भूत ने कहा कि अब मैं निकल जा रहा हूं। तो रामानुज ने कहा कि ऐसे कोई चीज करो, ऐसे कोई लक्षण बताओ जिससे कि हम सब लोग समझ सकें कि तुम इस राजकुमारी के शरीर को छोड़ के चले गए हो। तो भूत ने जवाब दिया कि यूं जो पास में उधर जो अश्वत्थ वृक्ष है उसका सबसे ऊंचा जो उसकी जो शाखा है जो वो मैं तोड़ दूंगा, जब वो टूट के नीचे गिर जाएगा आप समझ पाओगे कि मैं इस लड़की के शरीर से बाहर चला गया हूं। तो उस समय रामानुज ने देखा, सभी ने देखा कि सामने जो अश्वत्थ वृक्ष का वृक्ष था उसकी सबसे ऊंचे वाली जो शाखा है वो बड़े आवाज करके वो टूटकर नीचे गिर पड़ी और ठीक उसी क्षण राजकुमारी ऊपर उठी और जैसे पहले उसका व्यवहार हुआ करता था उस समय के पहले कि जब भूत उसके ऊपर सवार हुआ वैसे वो देखने लगी, बड़े भ्रांति में थी, अरे ये मैं कहां आ गई हूं, ये सब कौन है लोग हैं। और जब लोगों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था तो बड़े शर्मिंदा होकर अंदर भाग गए सिर झुकाकर, क्योंकि वो पता है मेरे ऊपर भूत सवार हो गया, मैं क्या क्या अनप शनप बोल रही थी। तो ये जब राजा ने देखा तो उन्होंने वो बड़े प्रसन्न हुए और सारे राज्य में रामानुजाचार्य के गुण फैल गए और यादव प्रकाश के बारे में लोग जानने लगे कि देखो ये गुरु क्या है और शिष्य क्या है। ये गुरु की शक्ति नहीं है लेकिन शिष्य देखो, ये शिष्य अपने गुरु से कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये सब बातें यादव प्रकाश सुन रहे थे और उनको बड़े तीर की तरह चुभ रहे थे हृदय में, लेकिन क्या करें, इस तरह से वो वहां अपने शिष्य को रखा तो था अपने गुरुकुल में लेकिन खुश नहीं थे। रोज जैसे हुआ करता था वे व्याख्या करते थे अलग अलग वेदांत के ऊपर उपनिषदों के ऊपर, तो एक दिन ऐसा आया कि जब वो इस प्रसिद्ध सूत्र के ऊपर टीका कर रहे थे, सर्व खल्व इदम ब्रह्म और नेह नानास्ति किंचना, और उन्होंने बताया इसकी व्याख्या इस तरह से की कि सर्वम खल्व इदम ब्रह्म का मतलब है कि सब कुछ ब्रह्म है। ये पेड़ ब्रह्म है, ये हवा ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मन, ये भगवान है, ये सब कुछ भगवान है। हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, ये पत्थर भगवान है, ये हवा भगवान है, ये पृथ्वी भगवान है, ये ब्रह्मांड भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये अद्वैतवाद है, मायावादियों का दर्शन ऐसे होता है। और नेह नानास्ति किंचना मतलब वो कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो कहते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, इसके अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है, बाकी जो भी सत्य दिखाई पड़ती है वो माया है, मिथ्या है। इसलिए नेह नान्यस्ति किंचना, इसका मतलब ऐसा है, यादव प्रकाश समझा रहे थे कि इस जगत में और कोई विविधता नहीं है, अगर कोई विविधता दिखाई दे रही है तो ये माया है, झूठ है। वास्तव में सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ एक है, वो है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो जब रामानुज ने यह सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाए, उठे और गुरु से कहने लगे कि सर्व खल्व इदम ब्रह्म का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ब्रह्म है, इसका मतलब है कि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है। भगवान विष्णु ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म से यह सृष्टि का निर्माण होता है, फिर यही पर ब्रह्म सृष्टि का पालन करते हैं और इसी पर ब्रह्म के अंदर फिर से सृष्टि विलीन हो जाती है और पुनः सृष्टि का निर्माण उन्हीं से होता है। इस तरह से सृष्टि का निर्माण होना, पालन होना, सृजन होना, यह उन्हीं की शक्ति से होता है। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं यह भगवान की शक्ति है, यह भगवान नहीं है। हालांकि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होता है एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन फिर भी इसमें भिन्नता भी होती है। और यह जो हम विविधता देख रहे हैं, यह विविधता भी सत्य है। हालांकि यह भौतिक जगत क्षणभंगुर है, फिर भी यह सत्य है, यह विविधता भी सत्य है। जिस तरह से एक मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला, माला में हम देखते हैं कि कितने सारे मोतियां होते हैं, लेकिन फिर भी यह विविधता का आधार एक है, वह है जो धागा जिसके ऊपर की ये मोतियां टंगी हुई हैं। ठीक उसी प्रकार से नेह नान्यस्त कंचन किंचना, इसका मतलब यह नहीं कि विविधता नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये सारे अनंत विविधता के पीछे जो सत्य है वो एक है, वो है भगवान। इस तरह से रामानुजाचार्य ने व्याख्या की तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान समझते हो, तो मेरे पास क्यों आते हो, चले जाओ यहां से, अपनी ही पाठशाला शुरू कर दो। तो फिर रामानुज ने कहा जैसे आपकी इच्छा, फिर अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर घर चले गए। उस दिन से वो यादव प्रकाश के गुरुकुल में कभी नहीं गए। उधर एक दिन जब वो अपने घर में बैठकर ही पढ़ रहे थे तो फिर से कांचीपूर्ण वहां पर चले आए। कांचीपूर्ण जैसे हमने पहले कहा, वो इतने महान वैष्णव थे कि हालांकि वो शुद्ध परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, फिर भी बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनको उनकी प्रशंसा करते थे, उनको मानते थे, उनको नमस्कार करते थे। थोड़े ब्राह्मण ऐसे थे जो नहीं मानते थे, और वो इसलिए नहीं मानते थे कि उनके खुद के हृदय में इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि वो अपने जाति के प्रति बहुत घमंड रखते थे कि हम ऊंचे ब्राह्मण कुल के लोग हैं और ब्राह्मणों के अलावा कोई भक्त नहीं बन सकता। और उनमें से यादव प्रकाश भी एक थे। तो जब कांचीपूर्ण चलते थे तो कभी कभी रास्ते में यूं ही खड़े हो जाते थे, हंसते मुस्कुराते थे, जैसे कि मानो वो भगवान को उस आंखों से सामने देख रहे हैं। और सभी लोग जो विद्वान थे वास्तव में जानते थे कि कितने महान भक्त हैं। बचपन से ही वो वरदराज की सेवा में वो मग्न रहा करते थे। चामर लेकर उसमें थोड़ा बहुत पानी छिड़काकर वो शीतल हवा देते थे वरदराज को। इस तरह से दिन भर वरदराज की सेवा में मग्न रहते थे, बड़े नम्र थे। और जब वो वहां पर आए तो रामानुज ने उनसे कहा कि आपको तो पता ही होगा कि यादव प्रकाश जी ने हमें पाठशाला से निकाल दिया है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मैं आपके शरण में आ सकता हूं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप ही मेरे गुरु बनिए, मैं आपका शिष्य हूं आज से। तो फिर कांचीपूर्ण कहने लगे, कह रहे तुम क्या कह रहे हो, मैं तो एक शूद्र हूं, मुझे शास्त्रों के बारे में क्या मालूम है, और तुम तो इतने विद्वान हो, तो यह योग्य नहीं है। तो रामानुज ने कहा कि नहीं, केवल शास्त्रों के ज्ञान से अगर किसी को घमंड आता हो तो धिक्कारो, धिक्कार हो ऐसे शास्त्रों के ज्ञान को, हमें नहीं चाहिए ऐसे शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन आपके अंदर विष्णु भक्ति है, आप तो शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं आप, इसलिए शास्त्र में जितने भी सारे विधि विधान हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितना भी ज्ञान है, उसका निष्कर्ष आपके चरित्र में दिखाई पड़ता है, आपके व्यवहार में, आपकी चेतना में, इसलिए आप इस सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, और मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे कोई सेवा दीजिए। तो कांचीपूर्ण कहने लगे, मैं तो क्या सेवा दूंगा, ठीक है तुम पूछ रहे हो तो ये सेवा करो कि हर रोज वरदराज ली के लिए उस शहर के बाहर जो कुआं है उसमें से एक पानी का मटका ले आओ उनकी सेवा के लिए। और फिर रामानुज ने सेवा को स्वीकार किया और रोज करते रहे इसको बड़े नम्रता से। देखिए रामानुज इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने, कांचीपूर्ण ने उनको ऐसी सेवा दी, सरल से सरल सेवा। वास्तव में ज्यादा पंडित होना यह भी एक खतरा है, कि ज्यादा विद्वत्ता हो जाती है आदमी में तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, इससे दूसरे प्रकार का अज्ञान आ जाता है। तो पढ़ना तो चाहिए लेकिन बड़े नम्रता से, नम्र भावना, भक्ति भावना रखनी चाहिए, और शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, और जो साधारण से साधारण सेवाएं होती हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि साधारण सेवा करने से हमारे मन में ही हम ये जान सकते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। थोड़े श्लोक हमने बोल दिए, थोड़ा कुछ ज्ञान हमें शास्त्रों का हो गया, थोड़ा कुछ पद हमें मिल गया, तो मैं बड़ा आदमी नहीं हो गया, मैं तो केवल वैष्णव दासानुदास हूं। तो इस बात को मन में रखने के लिए बार बार ठोकर मारना पड़ता है मन को, क्योंकि भगवान की माया शक्ति इतनी बलवान है कि हमें इस बात को भुला देती है कि हमारा स्वरूप है कृष्ण के दासों का दास। माया तो हमें हमेशा यही बताती है कि तुम बॉसों के बॉसों का बॉस हो, लेकिन शास्त्र में बताया तुम दासों के दास हो। संसार में सब लोग बॉस बनना चाहते हैं लेकिन भक्त लोग दास बनना चाहते हैं, तो इसलिए झगड़े होते हैं। अभी सभी लोग बॉस बनना चाहे तो कैसे होगा, काम नहीं चलेगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग में साधारण से सेवा करना यह बहुत जरूरी है, कोई भी क्यों ना हो, ऐसे साधारण सेवा करने से हम अपने आप को नम्रता की अवस्था में रख पाएंगे। तो देखिए कांचीपूर्ण ने ऐसी सेवा दे दी उनको, और रामानुज ने भी यह नहीं कहा कि अरे मैं इतना पंडित विद्वान और मुझे ऐसी सेवा, मुझे कुछ ऐसी सेवा दो जहां मैं जाके कुछ धुआंधार कुछ प्रवचन दे दूं, ऐसे नहीं। हां स्वीकार किया, बड़े नम्रता से स्वीकार किया और रोज करते रहे ऐसी ही सेवा। इस तरह से काफी समय बीत गया और कांचीपूर्ण और रामानुज इनका प्रेम का संबंध बड़ा घनिष्ठ होने लगा, बहुत ज्यादा तीव्र होने लगा, और इस तरह से गुरु शिष्य एक दूसरे को रोज मिलते, रोज कृष्ण कथा करते, कृष्ण नाम लेते और वरदराज जी की सेवा करते रहते। तो अगले एकादशी को हम सुनेंगे फिर रामानुजाचार्य के जीवन में क्या हुआ। अब जब तक ये कथा समाप्त नहीं होगी तब तक एकादशी के बाद एक एकादशी ऐसे कथा जारी रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, आपके कोई टीका टिप्पणी?
तो पिछले दो एकादशियों से हम दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के महान आचार्यों के बारे में सुन रहे हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की थी श्री नाथ मुनि उनके बारे में, और फिर बाद में यामुनाचार्य, जिनका नाम आगे चल के हुआ आलबंदार। वो कहानी याद है आपको, उन्होंने किस पंडित को हरा दिया था, विद्वाजन कोलाहल। जो विद्वानों के सभा में कोलाहल कर देते थे क्योंकि वो सबको हरा देते थे। तो हालांकि यमुना केवल 12 साल के बालक थे, फिर भी उन्होंने इस राज पंडित को हरा दिया और उनको आधा राज्य मिल गया, राजा बन गए, भगवान को भूल गए। फिर नाथ मुनि ने अपने शिष्य राम मिश्र को भेजा और हमने सुना था कि किस तरह से राम मिश्रा ने यमुना को फिर से भक्ति के मार्ग में खींच के वो ले आए और फिर यमुना आगे चल के महान आचार्य बने, वैष्णव आचार्य श्री रंगम में, रंगनाथ के बड़े शुद्ध भक्त बन गए। और जिस समय यमुना आचार्य श्री रंगम में निवास करते थे उधर, और एक महान वैष्णव का जन्म हुआ कहीं और भूतपुरी में। यमुनाचार्य के एक शिष्य थे जो सन्यासी थे, जिनका नाम था शैलपूर्ण। शैलपूर्ण के दो बहनें थीं, एक का नाम था कांतिमती। कांतिमती का विवाह केशव आचार्य नाम के एक ब्राह्मण से हुआ और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो आगे चल के रामानुज आचार्य बने। तो रामानुज के बारे में हम पिछली बार सुन रहे थे किस तरह से वो पाठशाला में गए, बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई सीखे, आगे चल के यादव प्रकाश जो कि एक मायावादी थे उनके गुरुकुल में जाकर पढ़ा करते थे, लेकिन बार बार अपने गुरु के साथ मतभेद होता था क्योंकि हृदय से रामानुजा वैष्णव थे, भक्त थे, परंतु यादव प्रकाश वो शंकराचार्य के अनुयायी थे, अद्वैतवाद का प्रचार करते थे। और बार बार जब रामानुज ने ऐसे उनके शिक्षाओं में उपदेशों में दोष ढूंढना आरंभ किया तो यादव प्रकाश ने उनको मार डालने के लिए एक षड्यंत्र रचाया, उसके बारे में भी हम पिछली बार सुन रहे थे। फिर अंततः रामानुज अपने भाई गोविंद की वजह से बच गए और फिर वापस लौट के आ गए और फिर से यादव प्रकाश के पाठशाला में आए मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। किसी को यह बात उन्होंने बताई नहीं कि उनको मालूम था कि यादव प्रकाश उनको मारना चाह रहे थे, परंतु यादव प्रकाश के हृदय में एक बढ़ता हुआ भय था अपने इस शिष्य के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा विद्वान होते जा रहा था और उनके उपदेशों में दोष ढूंढते जा रहा था और सभी लोग पहचान पा रहे थे कि ये रामानुज जो है बहुत बुद्धिमान है, अपने गुरु से भी श्रेष्ठ है। इसलिए एक दिन यादव प्रकाश ने रामानुज को अपने पाठशाला से बाहर निकाल दिया, कहा कि अब आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, चले जाओ। अभी आपको स्मरण होगा कि हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि रामानुज एक बहुत महान वैष्णव का संग करना पसंद करते थे जिनका नाम था कांचीपुरम। बहुत अच्छा, कांचीपुरम वैसे एक शूद्र परिवार के जन्म के थे लेकिन महान वैष्णव थे, रंगनाथ जी के बड़े शुद्ध भक्त थे और कई जो महान ब्राह्मण थे वो भी इस बात को जानते थे और कांचीपुरम को बड़ा सम्मान देते थे। लेकिन कई ऐसे कट्टर ब्राह्मण थे जो नहीं मानते थे कांचीपुरम को, कांचीपुरम को नहीं मानते थे, कांचीपूर्ण, और उनमें से यादव प्रकाश एक थे। लेकिन रामानुज हमेशा इनका संग किया करते थे, इनके संग में बहुत आनंद लेते थे और वो जानते थे कि भक्ति मार्ग में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं उठता। बार बार वो इनसे प्रार्थना करते कि वो उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करें, लेकिन हमेशा कांचीपूर्ण इनकार कर देते थे। और जब यादव प्रकाश के
पाठशाला से बाहर निकाले गए रामानुज, फिर से कांचीपूर्ण के पास आए और उनके शरण में जाकर कहा कि मुझे कोई आदेश दीजिए। तो कांचीपूर्ण ने कहा उनसे कि रोज आप वरदराज जी, वरदराज भी भगवान कृष्ण का एक रूप है, एक नाम है, जो कांची कांचीपुरम नाम के गांव में वरदराज जी का बहुत सुंदर बड़ा मंदिर है, तो कांचीपूर्ण वहां पर उनकी सेवा किया करते थे। तो उन्होंने रामानुज को आदेश दिया कि रोज तुम उस कुएं से जल भरकर वरदराज की सेवा के लिए पानी ले आओ। और ऐसे ही रामानुज हर रोज करते रहे। और आपको याद होगा कि पिछली बार यह भी चर्चा हुई थी कि यमुनाचार्य इस बार वरदराज जी का दर्शन करने के लिए श्रीरंगम से कांचीपुरम आए थे और मंदिर के बाहर उन्होंने रामानुज को देखा। पहचानते नहीं थे कि ये कौन है ये नवयुवक, देखने में इतना तेजस्वी और शुद्ध लग रहे थे। यमुनाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों को, ये लड़का कौन है? उन्होंने बताया कि ये रामानुज है और इसी ने वो वैष्णव टीका लिखी थी उपनिषदों के ऊपर, और ये टीका काफी प्रसिद्ध हो गई थी और यमुनाचार्य ने भी रामानुज के बारे में सुना था, तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन दूसरी ओर उनका हृदय दुखी भी हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामानुज एक मायावादी के संग में है, यादव प्रकाश। तो वो वरदराज जी से प्रार्थना करने लगे कि आप तो बड़े कृपालु हैं, तो किसी न किसी तरह से ये रामानुज जो कि आपका प्रिय भक्त है, उसको इस मायावादी के चंगुल से निकाल दीजिए, आप आपके चरणों में ले आइए। और फिर यमुनाचार्य वापस चले गए। मिलना तो चाहते थे लेकिन क्योंकि यादव प्रकाश के संग में थे इसलिए वो उनके पास में नहीं आए। उधर यमुना अकेले अपने घर में निवास करके शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे और इस तरह से कई महीने बीत गए। उधर श्रीरंगम में यमुनाचार्य, उनकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी, बहुत वृद्ध हो गए थे और बहुत बीमार भी हो गए, और ऐसे लग रहा था कि शायद उनके लिए थोड़ा ही समय बच गया है अभी दुनिया में। तो सारे भक्त उनके बहुत दुखी हो गए और उनके इर्द गिर्द आके जमा हो गए। ऐसे अवस्था में भी यमुनाचार्य ने प्रचार करना छोड़ा नहीं। स्मरण आता है श्रील प्रभुपाद जी का, जबकि प्राय उनको कोई शक्ति नहीं थी उठने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन फिर भी उनके शिष्य जो माइक्रोफोन है वो उनके मुंह के सामने रखते थे और वो श्रीमद् भागवत के की का अनुवाद करते थे, टीका करते थे। आखिरी दम तक उनका प्रचार बंद नहीं हुआ। ये भक्त की पहचान होती है, कृष्ण कथा करने में सुनने में कभी थकता नहीं है। तो इस तरह से यमुनाचार्य ऐसे अवस्था में भी प्रचार जारी रख रहे थे। मन ही मन में वो रामानुज के बारे में सोचते रहते कि कब रामानुज मेरे पास आएगा, कब रामानुज यहां आकर यहां इस मठ को संभालेगा, विष्णु भक्ति का प्रचार का काम संभालेगा, कब वो दिन आएगा। कि वो चाहते थे कि रामानुज यहां आए और फिर आगे यहां वैष्णव आचार्य बने श्रीरंगम में, यह उनकी इच्छा थी। और इस स्मरण में उन्होंने एक सुंदर रत्नमाला लिखी, स्तोत्र रत्न, बहुत सुंदर भजन है, श्लोक है, भगवान विष्णु की गुणगान है इसमें। और इस समय जबकि वो बहुत ही बीमार थे तो उनके शिष्य उनके पास में आकर उनसे कई प्रश्न कर रहे थे। उनमें से एक प्रश्न, एक शिष्य थे जिनका नाम था तिरुवरंगर। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर भगवान नारायण हमारे मन और हमारे वचनों के परे हैं तो हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, कैसे उनको जान सकते हैं? जो व्यक्ति हमारे मन के परे है तो हमारे मन किस काम का कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो तो हमारे मन, हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और भगवान इनसे परे हैं तो कैसे जाने जा सकते हैं? तो फिर यमुनाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया, ये सही है लेकिन अगर तुम नारायण को जानना चाहते हो तो नारायण के भक्तों की सेवा करो। नारायण के भक्तों की सेवा करने से सारे तत्व तुम्हारे हृदय में खुद ब खुद प्रकाशित हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। फिर उन्होंने कहा महाजनो ये न गतः सपन्था, महाभारत के श्लोक का प्रमाण उन्होंने रखा कि हमें केवल महाजनों की पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। और फिर वो कहने लगे कि मैं तिरुमंगई जो अलवर थे, महान भक्त श्री संप्रदाय के, उनके चरण कमलों को मेरे हृदय में रख के मैं आगे चल रहा हूं, मैं रंगनाथ जी की सेवा कर रहा हूं। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण आदेश यमुनाचार्य ने दिया अपने शिष्यों को। श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। कहा जाता है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों में से दो दो लक्षण या दो दो गुण चुने और उनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया। श्री संप्रदाय से उन्होंने ये दो गुण चुने, एक शुद्ध भक्ति का सिद्धांत जो कि कर्म ज्ञान योग इत्यादि से के मिश्रण से मुक्त है, और दूसरा वैष्णव सेवा, क्योंकि श्री संप्रदाय में इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, और यमुनाचार्य ने भी ऐसे ही किया। फिर उधर और दो उनके शिष्य थे, महापूर्ण और तिरुकोत्तीय पूर्ण। ये दो उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, बड़े विद्वान भी थे, लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन में ठान लिया कि अगर हमारे प्रिय गुरु महाराज अभी हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि हमारे जीने के लिए कोई कारण नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं हमारे जीने का, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। उधर और एक भक्त और एक शिष्य उनके पास में आए और बड़े दुख भरे आवाज में कहने लगे यमुनाचार्य से कि आप चले जाएंगे हमें छोड़कर तो हमारे लिए आश्रय क्या रहेगा, हम कहां जाएंगे। तो यमुनाचार्य ने उत्तर दिया कि चिंता नहीं करो, जो तुम्हें पहले से आश्रय देते आए हैं, अब भी आश्रय दे रहे हैं और आगे भी आश्रय देंगे, वो यहीं पर निवास करते हैं श्रीरंगम में, रंगनाथ जी हैं, उनका आश्रय ले लो। तिरुपति में वेंकटेश हैं, उनका आश्रय ले लो। कांचीपुरम में वरदराज हैं, उनका आश्रय ले लो, तो तुम कभी आश्रय से रहित नहीं रहोगे। उधर तिरुवरंग ने फिर से कहा कि आपने फिर से जाने का यहां से ठान लिया है, निश्चय कर लिया है। तो यमुनाचार्य ने कहा कि तुम तो बड़े विद्वान हो, क्यों इतना शोक करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि नारायण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मुझे यहां से जाना है तो यह भी नारायण की इच्छा है, तो नारायण की इच्छा को स्वीकार करके संतुष्ट रहो और उनकी सेवा में मग्न रहो। इस तरह से यमुनाचार्य ने अपने शिष्यों का कुछ सांत्वना दी। उधर काफी समय बीत गया लेकिन यमुनाचार्य का अंत नहीं हुआ, फिर से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि कितना सौभाग्य हमारा है कि हमारे गुरु महाराज हमारे बीच में रहे। उधर रंगनाथ जी ने एक सुंदर लीला की। एक बार जब शोभा यात्रा निकली बाहर, जैसे कि रंगनाथ जी के मंदिर में अक्सर होता है, तो भगवान रंगनाथ अपने एक पुजारी के माध्यम से बोलने लगे। वो पुजारी बड़े विचित्र ढंग से बोलने लगा, जोर जोर से, सीधे उन दो शिष्यों को बोलने लगा जिन्होंने आत्महत्या की कल्पना की थी, और सामने उनसे कहने लगा कि तुम्हारी आत्महत्या करने की इच्छा त्याग दो, इसके लिए मेरी अनुमति बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद पुजारी चुप रह गए। तो सभी ने समझ लिया कि रंगनाथ जी ने ये पुजारी के माध्यम से एक संदेश भेजा है इन दोनों के लिए। अक्सर ऐसे रंगनाथ जी बोला करते थे अपने भक्तों के माध्यम से। तो फिर खबर पहुंची यमुनाचार्य के पास, तो यमुनाचार्य ने फिर कहा कि देखो रंगनाथ जी अपने भक्तों के ऊपर कितने कृपालु हैं, उन्होंने अपने भक्तों को इस महापाप से बचाया है, क्योंकि आत्महत्या करना यह तो पाप है, महापाप। आत्महत्या करने से आदमी को भूत की योनि मिलती है, प्रेत की योनि मिलती है। इसलिए किसी व्यक्ति को आत्महत्या की करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और फिर यमुनाचार्य ने बताया कि हमें केवल भगवान रंगनाथ के चरणों में फूल जो अर्पण किए हुए हैं उनका उनको हमें सूंघते रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरु का आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। ये मेरे आखिर के आज्ञा है आप सबके लिए। और फिर उन्होंने आखिरी एक उपदेश दिया कि तिरुवरंग जो है वो मेरे बाद में यहां के आचार्य बनेंगे। उधर जब उनके उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे से ठीक हो रहा था, लेकिन दूर दूर तक खबर तो ये पहुंची थी कि यमुनाचार्य अभी अंतिम क्षणों में है, तो जगह जगह से ब्राह्मण और भक्त उनका दर्शन करने आ रहे थे। तो कांचीपुरम से भी दो भक्त दो ब्राह्मण आए और जब उन्होंने सुना कि यमुनाचार्य अभी ठीक है तो बड़े प्रसन्न हुए। तो यमुनाचार्य के पास जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, रामानुज कैसे है, कहां है रामानुज, क्या करता है अभी? तो फिर उन दो ब्राह्मणों ने बताया कि अभी वो यादव प्रकाश के साथ नहीं है, वो अपने घर में रह के अकेले शास्त्रों का अध्ययन करता है। तो इस बात को सुनकर यमुनाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता में उन्होंने 8 श्लोकों की रचना की भगवान विष्णु के गुणगान में। और फिर उन्होंने अपने एक शिष्य महापूर्ण से कहा कि तुम जाओ तुरंत यहां रामानुज को लेकर आओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। तो महापूर्ण जल्दी से जल्दी निकल पड़े। कांचीपुरम के लिए रास्ता कई दिनों का रास्ता था, पैदल ही एकमात्र मार्ग था। तो पैदल चलते चलते उनको पूरे 4-5 दिन लग गए पहुंचने के लिए। और वहां वो पहुंचे और रामानुज से मिले, लेकिन रामानुज को मिलने के पहले वो वरदराज का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और मंदिर के बाहर ही कांचीपूर्ण का दर्शन उनको हुआ। दोनों भक्तों ने आलिंगन किया और कांचीपूर्ण ने महापूर्ण को अपने आश्रम में वो ले गए, उनका स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया और साथ में कई घंटों तक वो कृष्ण कथा करते रहे। और अगले दिन सुबह को फिर उन्होंने कहा, चलो हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और जैसे ही वो दर्शन करने जा रहे थे तो सामने से रामानुज वो पानी लेकर उस कुएं से वरदराज की सेवा के लिए जा रहे थे। तो कांचीपूर्ण ने महापूर्ण से कहा कि ये देखो रामानुज आ रहा है, जाओ अपने मन की जो बात है वो जाके कह दो। और फिर कांचीपूर्ण अंदर मंदिर में चले गए। उधर महापूर्ण रामानुज के सामने आए और उन्होंने यमुनाचार्य ने के विरचित जो श्लोक थे थोड़े उनका उच्चारण बड़े मधुर स्वर में करना आरंभ किया। और जब रामानुज ने यह सुना तो बस वहीं के वहीं खड़े रह गए, सुनते रह गए। कितने सुंदर श्लोक हैं विष्णु के गुणगान में। और फिर उन्होंने पूछा कि हे महाशय, हे ब्राह्मण, ये आप किन की रचना है, ये इतने सुंदर श्लोक है, भक्तिमय श्लोक है। तो फिर उन्होंने कहा ये महान वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य के श्लोक हैं। तो यमुनाचार्य का नाम सुनकर तुरंत रामानुज का चेहरा खिल उठा, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो सुना था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, कैसे है अभी वो? तो महापूर्ण ने कहा कि अब तो काफी सुधार हो गया है उनकी तबीयत में। तो रामानुज ने पूछा कि कितने दिन हुए आप वहां से निकल पड़े? 5 दिन हो गए। और हमारे गुरु महाराज यमुनाचार्य ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो रामानुज को विश्वास नहीं हुआ कि इतने महान वैष्णव आचार्य वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, मेरा नाम भी अब तक वो कैसे जानते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, शायद आपने कोई गलती की होगी। तो महापूर्ण ने कहा नहीं नहीं, खास आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी शीघ्र आपको चलना होगा वहां। तो रामानुज इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे कि अभी आया मैं ये पानी वरदराज की सेवा के लिए देकर उनकी सेवा समाप्त करके मैं तुरंत आपके साथ चलता हूं। वरदराज जी की सेवा समाप्त करने के बाद जब वो आए तो कहने लगे महापूर्ण से कि चलिए इसी क्षण चलिए। तो महापूर्ण ने कहा क्या घर में जाकर आप बताएंगे नहीं, आप तो गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है, माता है, उनको उनसे कहेंगे नहीं कि आप श्रीरंगम जा रहे हैं? जब गुरु का आदेश है तो ये परिवार का क्या लेना देना, हमको तुरंत जाना चाहिए। तो तुरंत निकल पड़े। और जगह जगह अलग अलग ब्राह्मणों के घर में रुके, वहां रात को उन्होंने विश्राम किया, उनके घर में प्रसाद लिया और चार पांच दिन के बाद कावेरी के तट पे आकर कावेरी पार करके श्रीरंगम पे पहुंचे। उधर क्या हुआ था कि यमुनाचार्य उनकी तबीयत फिर से अचानक बहुत खराब हो गई और इस समय यमुनाचार्य को पता चला कि ये वाकई मेरे आखिरी क्षण है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने गृहस्थ शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं अब जाने वाला हूं, इसलिए तुम सब के लिए मेरे ये आखिरी आज्ञाएं हैं। वो इस प्रकार से है, पहली बात कि मैंने अगर आप सबके साथ में कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह दिखने में आता है कि खास करके जब वैष्णव कोई आचार्य होते हैं, जब गुरु होते हैं, तो गुरु होने के नाते, आचार्य होने के नाते कभी कभी उनको शिष्यों को टोकना पड़ता है, डांटना पड़ता है, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है। जिस तरह से माता पिता का कर्तव्य होता है कि जरूरत पड़ने से वो अपने बच्चों को डांटते हैं उनके हित के लिए, ठीक उसी तरह से गुरु को कभी कभी अपने शिष्यों को डांटना पड़ता है उनके सुधार के लिए, उनके हित के लिए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, कर्तव्य है इसलिए करते हैं। लेकिन अंत में जब वो इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार होते हैं तब फिर वो क्षमा याचना करते हैं। जब हम यमुनाचार्य की कथाएं सुनते हैं अंतिम क्षणों की, बार बार प्रभुपाद जी की याद आती है। प्रभुपाद जी भी इसी तरह से करते थे। अंतिम दिनों में वृंदावन में जब उनके दुनिया के कोने कोने से शिष्य हर दिन आते आ रहे थे और जैसे वो आते थे वो सब सारे शिष्यों से क्षमा याचना करते थे कि मैं तो बड़ा क्षुद्र जीव हूं, पापी हूं, आप सबके प्रति मैंने बहुत अपराध किए होंगे, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते हैं। तो यहां भी हम देखते हैं कि यमुनाचार्य अपने गृहस्थ शिष्यों से कह रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियां की होंगी, बहुत अपराध किए होंगे आपके प्रति, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने दूसरा उनको एक उन दूसरी बात कही उनसे, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो आपके बच्चे के बच्चों के समान हैं, तो कृपया उनका ख्याल रखिए, उनका भरण पोषण कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और तीसरी बात, तीसरी आज्ञा उन्होंने दी कि हर रोज आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए, देर से नहीं उठिए, जल्दी उठकर सीधे आप स्नान वान करके रंगनाथ जी के मंदिर में आइए, उनके चरण कमलों में फूल चढ़ाइए, उनके चरणों की सेवा कीजिए और फिर वो फल जो है उसको स्वीकार कीजिए, इसको निर्माल्य कहते हैं, जो भगवान को अर्पण करते हैं ना फूल इत्यादि, फिर वो उस प्रसाद को निर्माल्य कहते हैं। तो उसे स्वीकार करना, उसका उसका गंध लेना, सुगंध लेना, और उस तरह से रंगनाथ जी की सेवा करते करते तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और साथ साथ में जो भी अपने घर में अतिथिगण आएंगे तो उनकी सेवा बड़े अच्छे ढंग से करना। इस तरह से यमुनाचार्य ने उनको आज्ञा दी, अपनी अंतिम इच्छाएं प्रकट की और फिर अपने शिष्यों के संग में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जैसे ही प्राण त्याग दिया उस समय उनके शिष्य उनके इर्द गिर्द बैठकर बड़े मधुर ढंग से कीर्तन कर रहे थे, ठीक उसी तरह से जैसे प्रभुपाद के शिष्य कर रहे थे प्रभुपाद के साथ में। और उस समय वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे और अंदर ही अपने मन में भगवान विष्णु के ऊपर उन्होंने अपना मन केंद्रित किया और बड़े प्रेम से जैसे जैसे वो स्मरण कर रहे थे और कीर्तन चल रहा था उनके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, उनके चेहरे के ऊपर एक अद्भुत तेज चमक रहा था और ऐसे अवस्था में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और वो वैकुंठ वापस चले गए। जब शिष्यों को समझ में आया कि यमुनाचार्य अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो चले गए वैकुंठ, तो हाहाकार मच गया, सभी लोग बहुत शोक मचा रहे थे, थोड़े बेहोश होकर गिर पड़े, थोड़े हाय हाय कहने लगे, बहुत सारे शिष्य रोने लगे। फिर अंत में उनके जो सन्यासी शिष्य थे और यमुनाचार्य के पुत्र जो थे पूर्ण, उन्होंने सारी अंतिम क्रियाएं की, उनके शरीर को अच्छी तरह से नहलाया जैसे वैष्णव पद्धति में होता है, अंतिम क्रियाएं इस तरह से की जाती हैं एक वैष्णव के लिए। सबसे पहले उनका शरीर नहलाया जाता है, नहलाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर भगवान का जो प्रसाद होता है निर्माल्य होता है, जैसे भगवान का हार महाप्रसाद इत्यादि उनके ऊपर रखा जाता है, अगर हरि नाम का चादर है तो वो भी रखा जाता है उनके ऊपर, और फिर वहां भक्त लोग इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं, तुलसी गंगा जल इत्यादि रखा जाता है। लेकिन एक साधारण भक्त में और एक सन्यासी या एक महाभागवत भक्त में अंतर, अंतिम क्रियाओं में अंतर यह होता है कि वैष्णव, एक साधारण वैष्णव को स्मशान में ले जाया जाता है, उनके शरीर को जलाया जाता है, लेकिन एक महाभागवत या एक सन्यासी के शरीर को ऐसे जलाया नहीं जाता, केवल जमीन में दफनाया जाता है। और इसी तरह से वहां यमुनाचार्य का शरीर रखा हुआ था और बहुत सारे लोग जगह जगह से आए थे उनके शरीर का दर्शन करने के लिए, और ठीक उस समय रामानुज और महापूर्ण वहां पर पहुंच गए। उन्होंने देखा, वो वैसे तो यमुनाचार्य के आश्रम में जाना चाहते थे उनका दर्शन करने के लिए, जब बीच रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है तो पूछने लगे कि क्या बात है, यहां इतनी भीड़ क्यों है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि वैष्णव रत्न यमुनाचार्य अब हमें छोड़कर वैकुंठ लौट कर चले गए, भगवान नारायण उनको वापस बुला लिया। जब उन्होंने सुना तो महापूर्ण ने अपने कपाल को हाथ थाम दिया और नीचे गिर पड़े, रामानुजाचार्य भी उधर ही बेहोश होकर गिर पड़े। फिर बाद में महापूर्ण उठे, बाह्य चेतना आई और फिर उन्होंने थोड़े पानी छिड़का कर रामानुजी को भी बाहरी चेतना में लाया, होश में लाया, और कहने लगे कि जल्दी चलो, अभी क्या कर सकते हैं, शोक करने से क्या लाभ होगा, भगवान नारायण की इच्छा के बिना क्या होता है, चलो जल्दी इसके पहले कि उनके शरीर की अंतिम क्रिया हो जाए, आके अंतिम दर्शन तो हम कर लें हमारे प्रिय गुरु महाराज की। फिर रामानुजाचार्य वहां पर आए पास में और उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य के शरीर के ऊपर एक अद्भुत तेज और शांति थी, ऐसे नहीं लग रहा था कि उनका प्राण उन्होंने त्याग दिया है, बड़े शांति से वहां लेटे हुए हैं ऐसे उनको लग रहा था। और सारी नजरें फिर रामानुज के ऊपर आईं, लोगों को ऐसे लग रहा था कि रामानुज और यमुनाचार्य के बीच में कोई विशेष संबंध है और मृत्यु उनको अलग नहीं कर रही है, मृत्यु उनके संबंध में मृत्यु कोई फर्क नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा था उनको। और फिर अंतिम क्रियाएं उधर होने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया होने के पहले एक बहुत अद्भुत घटना हुई। रामानुज ने देखा कि यमुनाचार्य के दाहिने हाथ के तीन उंगलियां वो ऐसे बंद हैं, मानो कि आधी मुट्ठी उन्होंने बंद कर दी है, इस तरह से केवल आखिरी दो जो अंगूठे हैं, जो उंगलियां हैं वो खुली थी, बाकी तीन अंगूठे बंद, तीन उंगलियां बंद थी, ऐसे मुट्ठी बंद था। तो रामानुज ने शिष्यों से पूछा कि क्या ये हमेशा इनकी उंगलियां ऐसे रहती थी? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें भी आश्चर्य लग रहा है कि बाकी सारे बाएं हाथ की उंगलियां तो ठीक हैं और दाहिने हाथ के दो उंगलियां भी ठीक हैं, लेकिन केवल ये तीन उंगलियां ऐसे हैं, इसका कारण क्या है हम नहीं जानते। तो फिर रामानुज ने बड़े जोर से सबकी उपस्थिति में घोषणा की, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में, उनकी भक्ति में मैं सुदृढ़ अवस्था में रहूंगा और भारत भर में प्रचार के भ्रमण करके मैं प्रचार करूंगा विष्णु भक्ति के बारे में, और सारे भारतवर्ष में लोगों को मोह से मैं मुक्त कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो यमुनाचार्य की तीन उंगलियां जो बंद थी उनमें से एक खुल गया। फिर रामानुज आगे कहने लगे कि मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूं कि वेदांत सूत्र के ऊपर मैं एक भाष्य लिखने वाला हूं, वैष्णव भाष्य, जिसका नाम होगा श्री भाष्य, और इससे मैं सारे जो भी भ्रांतियां हैं परम तत्व के बारे में, भगवान के बारे में, उनको नष्ट करूंगा, खास करके जो ये अद्वैतवाद या मायावाद का दर्शन है। और जैसे ही रामानुज ने यह कहा दूसरी उंगली भी खुल गई, और फिर रामानुज ने कहा, मैं ये भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि पराशर मुनि जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उनकी स्मृति में भी एक वैष्णव, महान वैष्णव का नाम यहां पराशर रखा जाएगा। तो जैसे उन्होंने ये कहा यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी खुल गई। सभी लोग जो वहां उपस्थित थे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चकाचौंध रह गए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो समझ गए कि ये तीन बातें यमुनाचार्य की तीन अतृप्त इच्छाएं थीं, और फिर वो समझने लगे कि ये रंगनाथ जी की योजना थी कि रामानुज ही वो व्यक्ति होने वाले हैं जो यमुनाचार्य की इन तीन अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि यमुनाचार्य की तीन इच्छाएं जो अतृप्त थी वो ऐसे थी, पहले वो चाहते थे कि विष्णु भक्ति का प्रचार सब जगह हो सारे भारत में, और इसलिए वो रामानुज को यहां लाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो इतने विद्वान हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं और इतने बड़े प्रचारक हो सकते हैं। और वो ये भी चाहते थे कि अद्वैतवाद शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो ऐसे फैल रहा है कि उसका खंडन करना अति आवश्यक है, और इसके लिए वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखना जरूरी है। क्योंकि कोई वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उस संप्रदाय का वेदांत सूत्र के ऊपर कोई विशेष टीका न हो। तो ये इच्छा भी यमुनाचार्य की थी, और तीसरी इच्छा कि वो पराशर मुनि के बाद में अपने एक शिष्य को का नाम रखना चाहते थे। इस तरह से रामानुज के माध्यम से भगवान रंगनाथ जी ने बहुत अद्भुत एक घटना कर दिखाई। इस घटना के बाद रामानुज का चरित्र बिल्कुल बदल गया, बड़े गंभीर हुए वो उसके बाद में, और तुरंत एक शब्द और किसी से न कह के वहां से निकल पड़े। किसी ने कहा कि कम से कम रंगनाथ जी का दर्शन करके तो जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन क्रूर भगवान का दर्शन नहीं करूंगा जिन्होंने कि मुझे मेरे प्रिय जो गुरु हैं यमुनाचार्य उनके उनके मुलाकात करने से मुझे दूर रख लिया। तो वह सीधे वापस कांचीपुरम चले गए, और दिन ब दिन उनकी भक्ति तेज बढ़ती रही बढ़ती रही। ज्यादा से ज्यादा वो अभी भक्ति में रुचि लेने लगे। वैसे भी पहले से ही शुद्ध भक्त थे लेकिन उनकी भक्ति और तीव्र होने लगी दिन ब दिन, और अभक्तों के संग से ज्यादा घृणा करने लगे, दूर ही रहते थे, और कांचीपूर्ण के संग में ही वो आनंद लेते थे। क्योंकि कांचीपूर्ण तो इतने शुद्ध भक्त थे कि जो भी वरदराज से किसी को पूछना होता था तो कांचीपूर्ण के माध्यम से पूछते थे और वरदराज कांचीपूर्ण को बताया करते थे। लेकिन उधर रामानुज की जो पत्नी थी जिनका नाम था रक्षकम्बल, उनको थोड़ी चिंता हो गई रामानुज की अति तीव्र भक्ति को देखकर। क्योंकि इस समय रामानुज की जो माता थी कांतिमती वो भी वैकुंठ चली गई, उनका देहांत हो गया था, और अभी रक्ष कंबल जो है वो अभी घर को संभाल रही थी। वो वैसे तो बहुत स्वच्छ थी, सारे नियमों का बड़े कड़क पालन करती थी और अपने पति की भी सेवा करती थी, लेकिन वो ज्यादा इतनी भक्ति में रुचि नहीं लगती थी। जैसा कि जो थोड़े कर्मकांड ब्राह्मण होते हैं जो ज्यादा रीति रिवाज में ज्यादा रुचि लेते हैं भक्ति में नहीं, तो उनकी पत्नी ऐसी थी। वो थोड़ी चिंतित हो गई लेकिन फिर भी अपने पति से बाहरी रूप से कुछ उन्होंने कहा नहीं। इस तरह से रामानुजाचार्य अपने मन ही मन में यमुनाचार्य के विरह में वो बहुत दुखी रहा करते थे, और कभी कभी वो कांचीपूर्ण से कहा भी करते थे इस बारे में, लेकिन कांचीपूर्ण उनको समझाते कि देखो ठीक है, भगवान नारायण की इच्छा ही परम है, तो इस बारे में शोक करने से क्या लाभ होगा, केवल वरदराज की सेवा करते रहो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस तरह से काफी समय बीत गया, और फिर रामानुज ने निर्णय लिया कि मेरे पास तो अब कोई गुरु है नहीं, यादव प्रकाश जो कि मेरे गुरु थे वो तो मायावादी हैं, अब कांचीपूर्ण इतने महान वैष्णव है, महाभागवत है, मुझे फिर से निवेदन करना चाहिए उनसे कि वो मुझे आश्रय दें। लेकिन कांचीपूर्ण इतने नम्र थे, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो शूद्र जाति का हूं और तुम तो ब्राह्मण हो, तो मैं कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकता हूं, यह उचित नहीं है, और वैसे भगवान वरदराज की योजना से तुम्हें आज नहीं तो कल कोई ऐसे योग्य गुरु मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो, थोड़ा धीरज रखो। पर अपने मन ही मन में रामानुज विचार कर रहे थे कि कोई ऐसे मुझे तरकीब निकालनी चाहिए, कोई ऐसी युक्ति से किसी न किसी तरह से इनकी कृपा मुझे प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि कल मैं इनको मेरे घर में प्रसाद के लिए बुलाऊंगा और उनका उच्छिष्ट का सेवन करूंगा, तो इससे कम से कम मुझे इनकी कृपा मिलेगी। ये तो अपने आप को शूद्र कहलाते हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़े ब्राह्मण के से भी बड़े ऊंचे हैं, क्योंकि महान भक्त हैं भगवान के। तो भक्त के लिए ऐसी कोई ऊंच नीच की बात नहीं होती है। तो फिर रामानुज ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कांचीपूर्ण को यहां बुला रहा हूं प्रसाद के लिए, तो बढ़िया से बढ़िया प्रसाद बनाना। और फिर वो निकल पड़े उनको बुलाने के लिए। कांचीपूर्ण बड़े बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि रामानुज को, कि रामानुज के मन में क्या इच्छा थी, किस हेतु वो उनको प्रसाद के लिए बुला रहे हैं घर में, अच्छी तरह से जान गए, क्योंकि वैष्णव से ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर ये रामानुज ऐसे चाहता है तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। तो वो जानते थे कि किस रास्ते से रामानुज उनके घर तक आने वाला है, उनके आश्रम तक, तो किसी दूसरे रास्ते से ही गए और सीधे रामानुज के घर में गए, जबकि रामानुज वहां पर थे नहीं, उनकी पत्नी अकेली थी। और कहने लगे कि मुझे थोड़ी जल्दी से जाना है, वरदराज जी की सेवा करने के लिए जाना है, तो आपने प्रसाद बनाया है जल्दी जल्दी से मुझे खिला दीजिए। तो उनकी पत्नी रक्षकम्बल ने कहा कि मेरे पति तो अभी अभी आते होंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी आएंगे फिर आराम से आप प्रसाद ले सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे पापी पेट के लिए मैं वरदराज जी की सेवा में देरी करूं ये अच्छा नहीं है, मेरे पास केवल चंद मिनटे हैं, इसलिए जल्दी से जो तैयार है वो दे दो, मैं खा के चले जाऊंगा। तो फिर बड़े अच्छे ढंग से रक्षकम्बल देवी ने उनकी सेवा कर दी और जल्दी से भोजन या प्रसाद ग्रहण कर लिया। और फिर वो उठे, उठकर जो अपने केले का पत्ता था वो हाथ में ले लिया और फिर गोबर पानी के मिश्रण से वो जगह छिड़क दिया, साफ कर दिया अपने जगह को, और बाहर एक दूर जगह गए वो केले के पत्ते को फेंकने के लिए। तो उस समय रक्षकम्बल जो रामानुज की पत्नी थी, उन्होंने जो भी बचा हुआ प्रसाद था वो एक शूद्रानी को दे दिया। और थोड़ी देर बाद फिर से वो पकाना शुरू कर दी उन्होंने। जब रामानुज फिर से घर में आए, देखा कि अरे कहां चले गए, कांचीपुर नहीं है, तो नहीं वो तो प्रसाद लेकर चले गए। अरे फिर सुबह जो तुमने प्रसाद इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे वो सब कहां है, ये सब दोबारा क्यों प्रसाद बना रही हो? तो पत्नी ने कहा कि जो प्रसाद उनका बचा हुआ था वो मैंने शूद्रानी को दे दिया, क्योंकि आखिर वो तो शूद्र है, इसलिए मैं कैसे आपके लिए रख सकती हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह से स्नान करके मैं अभी दूसरा प्रसाद बना रही हूं आपके लिए। तो यह सुनकर रामानुज को बड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम मूर्ख औरत, तुमने क्या किया तुमको मालूम है, ये इतने महान वैष्णव है तुमको शूद्र के बराबर समझते हो, देखो मेरा इतना अच्छा मौका गंवा दिया तुमने, मैं इनका उच्छिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करना चाहता था और सब कुछ खराब कर दिया तुमने। तो अपने हाथ में सिर लेकर रामानुज शोक करते बैठ गए। तो इस तरह से कांचीपुरम में कांचीपूर्ण और रामानुज आपस में संग करते रहे, कृष्ण कथा करते रहे। एक दिन कांचीपूर्ण वरदराज जी से प्रार्थना करने लगे कि हे वरदराज जी, आप मेरे जीवन के साथ में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, अभी आप ऐसे सब लोगों को मेरे पास ले आ रहे हैं, मेरा गुणगान हो रहा है, लोग ये रामानुज है इतना शुद्ध भक्त है, ब्राह्मण है, वो भी मेरे को मुझे नमस्कार करता है और मुझे गुरु स्वीकार करता है, मुझे दीक्षा के लिए बार बार याचना कर रहा है, सभी लोग मुझे महान वैष्णव समझते हैं, ये इतनी प्रतिष्ठा आप मुझे दे रहे हो और आप मेरा भक्ति नष्ट करना चाहते हैं क्या, तो मुझे यहां से आप ले जाओ, मैं बालाजी जाना चाहता हूं तिरुपति, और वहां मैं बालाजी की सेवा करूंगा। तो वरदराज ने कहा ठीक है चले जाओ। तो वो चले गए। फिर 6 महीने तिरुपति में रहे और वहां पर बालाजी की सेवा करते रहे। 6 महीनों के बाद में उनको एक स्वप्न आया, स्वयं वरदराज जी आए स्वप्न में और कहने लगे कि हे कांचीपूर्ण, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम जो यहां कांचीपुरम में हमेशा मुझे चामर से ठंडी हवा दिलाए करते थे वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो तुम लौट के चले आओ यहां पर। तो फिर कांचीपूर्ण बड़े खुश हो गए, तुरंत लौट कर चले आए वहां पर। और जब रामानुज ने देखा कि कांचीपुर वापस आ गए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और दोनों फिर से आनंद से कृष्ण कथा करने लगे। इस समय रामानुज ने कांचीपुर से एक प्रश्न किया। वो कहने लगे कि देखो, यहां मुझे मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु नहीं है। अब मैं अकेले शास्त्रों को पढ़ता हूं और कभी कभी मुझे कमी महसूस होती है गुरु की। ऐसे कई चीजें हैं जो मैं समझ नहीं पाया हूं शास्त्रों में, इसके बारे में मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए गुरु से। तो मेरे मन में थोड़े कोई प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूं, मेरे समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। तो कृपया आप वरदरा जी से पूछिए और उनसे कोई उत्तर लाइए मेरे लिए। याद रखिए कि रामानुज ने कांचीपुर को यह नहीं बताया कि कौन से प्रश्न उनके मन में है, केवल ऐसे ही कहा कि कोई संशय है शास्त्रों के बारे में। तो फिर कांचीपुर ने कहा, ठीक है, मैं वरदराज से पूछ लेता हूं, कल बात करेंगे। तो फिर अगले दिन जब रामानुज कांचीपुर के पास आए तो कांचीपुर ने कहा कि हां, वरदराज जी ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए 6 उपदेश हैं और उन्होंने मुझे कहा कि खास जाकर ये रामानुज को बताओ। तो पहला उपदेश तुम्हारे लिए वरदराज जी का है, वो ये है कि मैं ही परब्रह्म हूं और मैं इस भौतिक सृष्टि का उद्गम हूं। दूसरी बात, जीव और भगवान ये भिन्न हैं और ये सत्य या ये तत्व एक शाश्वत तत्व है। ये दूसरा उपदेश है। तीसरा उपदेश यह है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरणागत होना यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। यह तीसरा उपदेश। चौथा उपदेश है कि अगर मेरा कोई भक्त है जो मेरे शरण में आया हुआ है, अगर अनायास, अगर अचानक उसकी मृत्यु आ गई और मृत्यु के समय वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, फिर भी उसे मुक्ति मिल जाएगी, वो मेरे धाम को चले जाएगा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि भक्त कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करेगा। तो भक्तों का प्रश्न कई बार होता है कि अगर उस एक क्षण में हम भगवान को भूल गए, बाकी सब हम याद कर रहे हैं, लेकिन उस एक क्षण में भूल गए तो हमारा क्या होगा। तो यहां स्वयं भगवान ने वरदराज जी की मूर्ति के माध्यम से कांचीपुर को जवाब दिया रामानुज को आगे जाके बताने के लिए कि अगर कोई भक्त मेरे शरण में आया हुआ है, अगर हम वास्तव में शरणागत हैं भगवान के प्रति, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, तो अगर अकस्मात हमारे मन में मृत्यु आ जाए और हम भगवान को स्मरण नहीं भी कर पाए, लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा, मैं इसे मुक्ति दिला दूंगा। तो यह उनका चौथा उपदेश था रामानुज के लिए। पांचवा उपदेश यह था कि ऐसे जो मेरा शरणागत शुद्ध भक्त होता है, जब वो अपना देह त्याग देता है तो मैं स्वयं उसे मेरे धाम वैकुंठ में ले जाता हूं। पांचवा उपदेश। और छठा उपदेश है खास रामानुज के लिए, हे कांचीपूर्ण आप जाके बताओ कि रामानुज को यमुनाचार्य के जो शिष्य हैं जिनका नाम है महापूर्ण, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। महापूर्ण वही थे जिनको यमुनाचार्य ने भेजा था पहली बार उनको वापस ले आने के लिए श्रीरंगम में, और दोनों रामानुज और महापूर्ण जब गए थे तो उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य वैकुंठ चले गए हैं, तो उसी उन्हीं महापूर्ण से उनको दीक्षा लेने का आदेश वरदराज जी ने दिया। रामानुजाचार्य बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो उनको प्रश्न भी नहीं बताए थे और ये जो 6 प्रश्न है, ये मेरे 6 प्रश्नों के उत्तर है। जो भी संशय मेरे मन में थे उनका निवारण भगवान ने कर दिया। तो बड़े आश्चर्य। श्रीरंगम में, हालांकि तिरुवरंग अभी मठाधीश बने थे, वो प्रमुख आचार्य थे वैष्णवों के, लेकिन जिस तरह से यमुनाचार्य पहले शास्त्रों के ऊपर टीका करते थे, प्रवचन देते थे, शास्त्रों को समझाते थे, वैसे कोई समझाने वाला यमुनाचार्य के बाद में श्रीरंग में कोई नहीं था। हालांकि तिरुवरंग बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, और सभी वहां के ब्राह्मण और वैष्णव उनको बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि वो दिन भर भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा में रत रहते थे और उनके अंदर वैष्णव गुण भी थे। लेकिन वो शास्त्रों के ऊपर ऐसे व्याख्या नहीं कर सकते थे जैसे कि यमुनाचार्य किया करते थे, इसलिए खाली खाली से लग रहा था लोगों को। यमुनाचार्य के आश्रम में वो वातावरण अब नहीं रहा जो कि पहले रहा करता था। तो फिर जब यमुनाचार्य के तिरुभाव की पहली तिथि आई तो तिरुवरंग ने सारे वैष्णवों को बुलाया, एक सभा में एक इष्ट गोष्ठी हो गई, और उन्होंने कहा कि हमारे गुरु प्रिय गुरु महाराज यमुनाचार्य के वैकुंठ पधारे जाए हुए अभी ठीक एक साल हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हालांकि मुझे उन्होंने ये पद दिया था आचार्य का, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं, और हम देखते हैं कि वातावरण वैसे नहीं रहा है जैसे कि हमारे गुरु महाराज के समय था, और हम में से कोई इतनी सुंदर ढंग से व्याख्या नहीं कर सकता है जैसे ये हमारे गुरु महाराज करते थे। तो हमें याद होगा कि उनके अंतिम दिनों में उनकी इच्छा थी कि रामानुज यहां आए, और उन्होंने महापूर्ण को खास भेजा भी था कि जाओ जाके रामानुज को यहां पर बुला के ले आओ। इसका मतलब है कि हमें सब भी रामानुज को यहां पर वापस बुलाना चाहिए और रामानुज को आचार्य यहां का बनाना चाहिए। तो जब यह प्रस्ताव तिरुवरंग ने सामने रखा तो सारे वैष्णवों ने हां में हां मिला दिया, एक मत हुआ, सभी ने इस बात को स्वीकार कर दिया। सभी लोग जानते थे कि रामानुज कितने शुद्ध भक्त हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, और यमुनाचार्य के कितने प्रिय थे। और फिर उन्होंने चर्चा की कि ठीक है, हम इस बार भी महापूर्ण को भेजेंगे और वो जाकर वहां पे दीक्षा देंगे रामानुज को और उनको यहां श्रीरंगम वापस ले आएंगे, और अगर तुरंत वह आने के लिए तैयार न हो तो रामानुज को बताना नहीं चाहिए कि महापूर्ण उनको वापस ले जाने के लिए आए हैं श्रीरंगम, केवल उनके साथ में रहना चाहिए एक साल भर, उनको उपदेश करना चाहिए और धीरे धीरे से उनका हृदय बदलकर उनको श्रीरंगम में लाना चाहिए जहां वो आचार्य बन सकते हैं। तो फिर सारे उपस्थित वैष्णवों ने महापूर्ण को आदेश दिया, फिर महापूर्ण अपने पत्नी के साथ निकल पड़े। तो उधर रामानुज कांचीपुरम से निकल पड़े थे महापूर्ण से दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये वरदराज जी की आज्ञा थी, और इधर महापूर्ण कांची की ओर निकले थे क्योंकि ये सारे वैष्णवों की इच्छा थी, वो निकले थे रामानुज को दीक्षा देने के लिए। तो हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य का मिलन ये भगवान की योजना से होता है। कोई लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें गुरु मिलते हैं तो क्या हम भाग्यशाली हो जाए, तो हमारा भाग्य खुलता है। इसके जवाब में यह बताया जा सकता है कि अगर आपका भाग्य खुला है तो आपको गुरु मिलते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हमेशा बताया करते थे कि भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है और गुरु शिष्य का मिलन वही करा देते हैं। तो रामानुज और महापूर्ण के इस घटना से हम इस बात को जान सकते हैं। तो चलते चलते महापूर्ण और उनकी पत्नी 4 दिन चलते रहे और फिर एक स्थान में आए जिसका नाम था मधुरांतकम, जहां की एक सुंदर विष्णु का मंदिर था और उसके पास में बहुत सुंदर तालाब भी था। काफी थक गए थे, प्रसाद का सेवन करने के बाद उस तालाब के तट पर विश्राम कर रहे थे कि अचानक वहां पर रामानुज आए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो महापूर्ण को बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे, मैं भी तो तुम्हें ही मिलने जा रहा था, अचानक तुम यहां कैसे आ गए। फिर रामानुज ने बताया कि हमें भी वरदराज की आज्ञा मिली थी, इसलिए मैं यहां आया हूं आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो महापूर्ण ने कहा ठीक है, तो चलो हम चलते हैं कांचीपुरम, कांचीपुरम में दीक्षा का समारोह का अनुष्ठान हो जाए। तो रामानुज ने कहा नहीं, आपसे मेरी प्रार्थना यह है एक बार मैं धोखा खा चुका हूं, आप मुझे ले गए श्रीरंगम, लेकिन जैसे मैं पहुंचा मैंने देखा कि यमुनाचार्य वापस वैकुंठ चले गए हैं। तो मृत्यु जो है वो सही समय गलत समय को देखता नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं इस बार मैं धोखा नहीं खाना चाहता, इसी वक्त मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। तो महापूर्ण ने जब रामानुज की तीव्र इच्छा देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उन्होंने यज्ञ कुंड की स्थापना की और फिर वहां यज्ञ का संस्कार हुआ, दीक्षा हो गई वहां पर। और आप जानते हैं कि वैष्णव दीक्षा में मुद्रा भी दिए जाते हैं, खास करके श्री संप्रदाय में। मुद्रा में क्या होता है कि जो शंख है या चक्र है, ये लोहे के निशान होते हैं, इनके चिन्ह, उनको गर्म किया जाता है और फिर ये चिन्ह भुजाओं में उसका छाप लगाया जाता है, उनका चिन्ह लगाया जाता है, गरम गरम लोहा वहां लगाया जाता है, तो ये शंख और चक्र का चिन्ह लगाए, इसको मुद्रा कहते हैं। तो ये भी अनुष्ठान हो गया और इस तरह से रामानुज बड़े प्रसन्न हो गए और फिर अपने गुरु और गुरु माता को वापस अपने घर ले गए कांचीपुरम। और रामानुज के निवेदन पर महापूर्ण ने रामानुज की पत्नी रक्ष कंबल को भी दीक्षा दे दी। इस तरह से रामानुज ने अपने ही घर में अपने गुरु और गुरु माता को स्थान दिया रहने के लिए और उनके संग में रहे। 6 महीने बीत गए, हर रोज महापूर्ण और रामानुजाचार्य शास्त्रों की चर्चा करने के लिए बैठते और महापूर्ण ने रामानुज को जो पूर्व वैष्णव आचार्य हुए थे, खास करके आलवर इत्यादि, उनके 4000 श्लोकों से भी अधिक उनको पढ़ा के सुनाया समझाया और बड़े आनंद में थे रामानुज। बहुत दिनों के बाद वो ऐसे महान वैष्णव के साथ बैठकर शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे। तो एक दिन हुआ ये कि रामानुज की पत्नी रक्ष कंबल कुएं के पास गई थी पानी निकालने के लिए। उधर महापूर्ण की पत्नी वो भी वहां पर आई थी पानी लेने के लिए। तो जब उन्होंने महापूर्ण की पत्नी ने पानी निकाला मटके में से, तो थोड़े से बूंद जो है वो रक्ष कंबल के मटके में गिर गए। तो रक्ष कंबल देवी को बहुत गुस्सा आया और बड़े लाल लाल आंखों से जोर जोर से बोलने लगी कि अरे क्या तुम अंधी हो, अरे तुम हमारे गुरु की पत्नी हुई तो क्या हुआ, हमारे सर पे आके बैठ गई हो, क्या तुम देखते नहीं कि तुम्हारे मटके में से हमारे मटके में पानी गिरा है। गुरु पत्नी हो तो क्या हो, वैसे हमारा जात तुम्हारे जाति से ऊंचा है। तो इस तरह से काफी अपमान किया उन्होंने, बड़े कड़क शब्द कह दिए। तो ऐसे जब कह दिए तो महापूर्ण की जो पत्नी थी बड़े नम्र स्वभाव की थी, उन्होंने तुरंत क्षमा याचना की, लेकिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई तो तुरंत उसी जगह में बैठकर रोने लगी। और थोड़ी देर बाद महापूर्ण जब वापस आए, उन्होंने देखा कि पत्नी बैठकर रो रही है, तो पूछा क्या बात है, तो पत्नी ने सब कुछ बता दिया। तो महापूर्ण ने कहा कि इसका मतलब है कि श्री रंगन में रंगनाथ जी हमको इशारा दे रहे हैं कि वो हमारी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। हर चीज के पीछे भगवान नारायण की कोई ना कोई इच्छा है, भगवान हमें यहां से बुलाना चाहते हैं और इसका मतलब है कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। उस समय रामानुज किसी काम से बाहर गए थे, वो फल फूल और कपड़ा खरीदने गए थे अपने गुरु को अर्पण करने के लिए, लेकिन महापूर्ण उनके लौटने के लिए भी रुके नहीं, तुरंत अपना सामान लेकर अपनी पत्नी को साथ लेकर निकल पड़े, श्रीरंगम चले गए। जब रामानुज लौट कर आए घर में तो देखा कि उनके गुरु है नहीं घर में, कहां चले गए। फिर एक पड़ोसी ने उनको बताया कि वो चले गए वापस श्रीरंगम, अपना सामान वगैरह सब लेकर चले गए। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, आकर अपने पत्नी से पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों चले गए वो अचानक। तो फिर उन्होंने पत्नी ने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैंने तो ऐसे कोई इतनी तो कोई कड़क बात नहीं कही थी, लेकिन वो इतनी भड़क गई। और फिर इतना ही नहीं, जो तुम्हारे गुरु हैं वो अपने आप को साधु कहलाते हैं, जिनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतने गुस्से हो गए कि बस क्या कहने, शायद ये कोई नए जमाने के साधु लगते हैं, तो मैं इस नए जमाने के साधु के चरणों में शत शत प्रणाम अर्पण करती हूं। रामानुजाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी उनके गुरु के बारे में ऐसे बोल सके, वो कहने लगे, अरे तुम कितनी पापी स्त्री हो, तुम्हारा मुंह देखने से भी मैं नरक में जाऊंगा, हटो मेरे नजर के सामने से। और तुरंत गुस्से होकर वहां से निकल गए और फिर जो भी फूल वगैरह लाए थे वो वरदराज को अर्पण करने के लिए चले गए। उधर उनकी पत्नी रक्ष कंबल को बड़ा धक्का पहुंचा कि उनके पति ने उनके साथ ऐसा बात किया है, कभी आज तक इतने कटु वचन नहीं बोले थे। बस वहीं पर बैठ गई। ठीक उसी समय एक बड़े वृद्ध और भूखे से ब्राह्मण वहां पर आए। वैसे अतिथियों की सेवा करना हर एक गृहस्थ का धर्म होता है, किसी भी अतिथि को हमें निराश करके भेजना नहीं चाहिए अपने घर से कम दो मीठे शब्द बोलकर तो भेजना चाहिए, अगर भेजना भी हो तो। लब जब ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने के लिए, पहले ही रक्ष कंबल का मन विचलित हो गया था क्योंकि उनके पति ने उनको ऐसा डांटा था, तो वो गुस्सा उन्होंने इस ब्राह्मण के ऊपर निकाल दिया और कहने लगा, अरे यहां कहां मिलेगा तुम्हें चावल, कौन देने वाला है चावल, चले जाओ यहां से। तो बेचारे ब्राह्मण उदास होकर चले गए और जैसे वो जा रहे थे तो उस समय रामानुज वापस लौटे और उन्होंने इस ब्राह्मण को देखा, निराश होते हुए लौट रहे हैं, मुंह इतना छोटा है, उदास है लग रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप बड़े भूखे प्यासे लग रहे हो, क्या है, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं आपके घर में गया लेकिन आपकी पत्नी ने मेरा बहुत अपमान किया, भिक्षा नहीं दी, मुझे भगा दिया वहां से। तो रामानुज आचार्य मन में निश्चय किया कि अब तो बहुत हो गया। मन में एक तरकीब सोची, कहा कि मैं आपको बहुत बख्शीश दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको पत्र देता हूं, आप ये पत्र को मेरे पत्नी के पास ले जाइए और कहिए कि आप उनके पिता के पास से आए हैं, कि ये पत्र उनके पिता ने आपको दिया है उनके मेरे लिए। तो पत्र लिखा रामानुज ने और उस पत्र में उन्होंने ऐसे लिखा कि हे प्रिय रामानुज, मेरे दूसरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है और इसके लिए मैं तुम्हें निवेदन करता हूं कि मेरी पुत्री रक्ष कंबल जो तुम्हारी पत्नी है उसको यहां पर थोड़े दिनों के लिए भेज दो, क्योंकि मेरी पत्नी ये सारे विवाह के कार्य अकेले संभाल नहीं पा रही है, तो अगर रक्ष कंबल यहां रहेगी तो वो भी सहायता कर पाएगी, अतिथियों की सेवा कर पाएगी, अगर आप भी आ सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर ये चिट्ठी लिखकर रामानुज ने उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि आप जाकर मेरी पत्नी से कहो कि उसके पिता के पास से आप आए हो और ये चिट्ठी मेरे लिए है। तो जब रक्ष कंबल ने सुना, अच्छा मेरे पिता से आए हो, के पास से आए हो, तो बहुत अच्छा स्वागत किया, तुरंत पानी पिलाया, भोजन प्रसाद दिया, स्नान के लिए भी पानी दे दिया। और फिर रामानुज जब वापस आए तो बड़े नम्रता से रक्ष कंबल ने वो पत्र हाथ में दिया, कहा कि आपके लिए एक पत्र है मेरे पिताजी से। फिर रामानुज ने पढ़ के सुनाया कि ऐसे ऐसे कहते हैं तुम्हारे पिताजी। तो रक्ष कमल को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मेरे माता पिता को, बहन को मिलने जाऊंगी, मायके जाऊंगी, बहुत अच्छा है। तो रामानुज ने कहा, ठीक है आप इस ब्राह्मण के साथ चले जाओ, मुझे थोड़े जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, अगर काम निपट गया तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा। तो वो चले गए। तो फिर रामानुज अगले दिन वरदराज के मंदिर में गए, वहां उन्होंने वरदराज के चरण कमलों के से स्पर्श किया हुआ एक डंडा लिया और वहां जो गहरे वस्त्र थे वो भी स्वीकार किया और मंदिर के बाहर एक यज्ञ कुंड बनाया और वरदराज की योजना से कांचीपूर्ण भी वहां उसी समय आए, उन्होंने उनको सन्यास दे दिया और रामानुज ने उस समय सन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली और कांचीपूर्ण ने उनका नाम यतिराज रखा। यति मतलब सन्यासी, यतिराज मतलब यतियों में से सबसे श्रेष्ठ यतिराज। तो जब खबर फैल गई सारे कांचीपुरम शहर में कि रामानुज ने सन्यास लिया है, तो अलग अलग लोगों का व्यवहार हुआ। थोड़े लोग कहने लगे कि अरे इतने युवक युवा अवस्था में अपनी सुंदर पत्नी को कैसे वो छोड़ के सन्यास ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे भक्त थे जो बोल रहे थे कि देखो अभी हमारे बीच में एक महान वैष्णव भी आ गए, चलो इनके शरण में हम जाते हैं। इस तरह से एक एक करके उनके पास कई वैष्णव आए और उनके पास शिष्य भी आते रहे। उनमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था कुरेश, उनकी स्मृति शक्ति बहुत तेज थी और दूसरे थे दाशरथी जो उनके भांजे थे और वेदों में बड़े पंडित थे। तो ये दो उनके पहले दो शिष्य बन गए और इस प्रकार से रामानुज अपने शिष्यों के संग में अभी आचार्य बने थे कांचीपुरम के, तो रामानुज आचार्य हुए थे। तो रामानुज आचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठकर वरदराज मंदिर के बाहर वैष्णव सिद्धांत के ऊपर व्याख्या किया करते थे। बहुत सारे लोग आकर उनके वचनों से प्रभावित होते थे, उनका शरण ग्रहण करते थे। तो हुआ ये एक दिन कि जो उनके सबसे पहले गुरु थे यादव प्रकाश, जो मायावादी थे, उनकी माताजी, उनकी मां, वो और भी बहुत वृद्ध थी। वो वरदराज जी का दर्शन करने आई थी और दूर से उन्होंने देखा कि कितना सुंदर दृश्य है, ये रामानुजाचार्य गैरवे वस्त्र पहने हुए इतने तेजस्वी प्रकाशमान लग रहे हैं और वो उपदेश कर रहे हैं विष्णु भक्ति के बारे में। तो वास्तव में ये महान संत हैं, काश मेरा पुत्र भी इनके शरण में आ जाता। तो उन्होंने जाकर अपने पुत्र से कहा कि जाओ तुम ये रामानुजाचार्य के शरण में जाओ, देखो कितना महान आचार्य बन गया है। अभी जब से यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य का अपमान किया था, अपने पाठशाला से उनको बाहर कर दिया था, तब से उनका मन बड़ा बेचैन रहा करता था, बड़ा अशांत और विचलित रहा करता था। और जब उनकी मां से उन्होंने ये सुना, मन में आया तो सही विचार कि जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सोचते थे कि ये तो मेरा शिष्य था, अब मैं उसका शिष्य कैसे बनूं। फिर भी उन्होंने जाकर कांचीपुरम से सलाह मशवरा किया, कहा कि आपसे तो वरदराज जी बातचीत करते हैं, तो ये बताइए मेरे लिए मार्ग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, मेरा मन बड़ा विचलित है, बिल्कुल मन की शांति नहीं है मुझे। तो फिर कांचीपुर ने कहा कि मैं वरदराज जी से पूछ लेता हूं, आप कल आके मुझसे मिल लेना। तो अगले दिन जब कांचीपुर आए, जब यादव प्रकाश आए कांचीपुर के पास में, तो कांचीपुर ने कहा कि रामानुजाचार्य जैसे कोई भक्त यहां नहीं है, और रामानुजाचार्य के बहुत गुणगान करते रहे और कहा कि हे यादव प्रकाश, आपके लिए एक ही मार्ग है, आप भी उनका शिष्य बनिए, आप भी उनके शरण में जाइए। यादव प्रकाश ने सुन तो लिया लेकिन फिर भी हिचकिचा रहे थे। देखिए कोई आसान बात नहीं है, कोई गुरु हो वो अपने शिष्य का शिष्य बने, कोई साधारण चीज नहीं है ना। फिर भी वापस घर गए, सोच रहे थे मन ही मन में जो उनकी मां उनके बताया था, जो कांचीपुर ने उनको बताया था, और फिर बड़े करवट बदलते बदलते विचलित अवस्था में किसी न किसी तरह से देर में नींद आ गई। फिर उनको एक स्वप्न आया रात में, एक बहुत तेजस्वी व्यक्ति उनके मन में स्वप्न में आया और कहने लगा जाओ रामानुज के शरण में जाओ, उनका शिष्य बनो। और फिर वो जागे और सोचा कि ठीक है जाता हूं। लेकिन भाव से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे यादव प्रकाश, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वैष्णव सिद्धांत के बारे में मुझे कई संशय हैं। तो जब वो आए रामानुजाचार्य के पास, रामानुजाचार्य व्याख्या कर रहे थे, वो उठे और उनका स्वागत किया, उनको एक ऊंचा आसन दिया। और फिर यादव प्रकाश ने कहा कि हे रामानुज, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारे इस सौम्य व्यवहार को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और तुम्हारे शरीर पर जो मुद्राएं इत्यादि हैं उनको देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुमने विष्णु भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया है, जिसमें व्यक्ति समझता है कि विष्णु ही परम सत्य है और विष्णु के शरण में जाना, उनकी भक्ति करना ही ये सर्वश्रेष्ठ साधन है और साध्य भी है। लेकिन ठीक है तुम लोग ये ऐसा कहते तो हो, लेकिन इसके लिए शास्त्रों का प्रमाण क्या है? तो फिर रामानुज हंसे हल्के ढंग से और कहने लगे कि ये है कुरेश, उनके शिष्य की ओर उन्होंने इशारा किया, जो कि बहुत कम उम्र के थे, नव युवक थे। ये बड़े शास्त्र में विद्वान है, इनसे हम आइए सुनते हैं कि शास्त्र में क्या प्रमाण है विष्णु भक्ति के लिए। फिर कुरेश ने एक के बाद एक शास्त्रों के श्लोक कहने लगे प्रमाण, जिससे कि उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि शास्त्रों का सार है कि हमें भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ पथ है और यही जीवन की परिपूर्णता है। और आश्चर्यचकित रह गए यादव प्रकाश, कोई शब्द नहीं थे उनको कहने के लिए। और फिर इस समय उनके हृदय में एक परिवर्तन आया, आंखों में आंसू आए, सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उन्होंने रामानुज के ऊपर और फूट फूट कर रोते रोते कहा कि मैंने बहुत अपराध किए तुम्हारे प्रति, मैंने आज तक जीवन में बहुत सारी गलतियां की, न केवल तुम्हारे प्रति, वैष्णवों के प्रति, लेकिन मैंने गलत सिद्धांत को स्वीकारा। अब मैं समझ गया हूं कि किस तरह से विष्णु भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। रामानुजाचार्य ने उनको स्वीकार किया, उनको दीक्षा दी और यादव प्रकाश का नाम हो गया गोविंद दास। और उन्होंने कहा उनसे कि आज से आपके पूर्व जो भी हृदय के कलमश हैं वो सब नष्ट हो गए, लेकिन आपको पूर्व पापों से अगर मुक्त होना है तो आप एक ग्रंथ लिखिए कि जो आदर्श वैष्णव है उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से आपका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा और यही आपकी अंतिम सेवा होगी। उस समय यादव प्रकाश 80 साल के थे, तो उन्होंने यह ग्रंथ लिखा यति धर्म समुच्चय, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया वैष्णवों के कर्तव्यों का, उनके जो उचित कार्य कलाप है उनके बारे में। और इसके थोड़े ही समय बाद उनका देहांत हो गया और रामानुजाचार्य की कृपा से वो भी भगवान के धाम में लौटकर चले गए। इधर कांचीपुरम में रामानुजाचार्य के पास जगह जगह से शिष्य आते रहे, उनका जोरदार विष्णु भक्ति का प्रचार चलता रहा। लेकिन आपको याद होगा कि उधर श्रीरंगम में अभी तक भक्तों को खाली खाली वहां वातावरण लग रहा था और वो प्रार्थना कर रहे थे कि रामानुज कब वहां आएगा। उन्होंने महापूर्ण को भेजा हुआ था वहां कि आप जाकर रामानुज को ले आओ, लेकिन महापूर्ण अपने पत्नी के साथ जल्दी ही लौट कर चले आए क्योंकि उनकी पत्नी का अपमान हुआ था वहां पर। तो उस समय श्रीरंगम के भक्त सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, उन्होंने सुना कि रामानुज ने संन्यास लिया है, तो उस समय किस तरह से उन्होंने रामानुजाचार्य को श्रीरंगम लाया और किस तरह से फिर रामानुजाचार्य वहां पर श्रीरंगम में निवास करने लगे और वहां उन्होंने कौन सी सुंदर लीलाएं की, ये अगर आपको जानना है तो आपको अगले एकादशी को यहां आना होगा। श्रील रामानुजाचार्य की जय, श्री यमुनाचार्य की जय, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे।